नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। रूस की सरकारी मीडिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि यमन के हूती विद्रोहियों ने अपने शस्त्रागार में एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा किया है, जिससे गाजा पट्टी में हमास और इसराइल के युद्ध के बीच लाल सागर और उसके आसपास के जलमार्ग में जहाज़ों पर हूती विद्रोहियों के हमलों का जोखिम बढ़ गया है। रूस की सरकारी RIA नोवोस्ती समाचार एजेंसी ने एक अज्ञात अधिकारी के हवाले से यह खबर दी, लेकिन इस दावे के पक्ष में कोई सबूत उपलब्ध नहीं कराया। हूती के शीर्ष नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने बृहस्पतिवार को कहा कि विद्रोही अफ्रीका के दक्षिणी छोर में केप ऑफ गुड होप की ओर बढ़ रहे जहाज़ों पर हमले शुरू करेंगे। अभी तक विद्रोहियों ने सुएज नहर की ओर लाल सागर में जा रहे जहाज़ों पर हमले किए हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वो किसी भी संभावित हमले को कैसे अंजाम देंगे। इसी बीच तेहरान के तेज़ी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम और उसके छंद समूहों द्वारा हमलों को लेकर लंबे समय से बने हुए तनाव के बीच ईरान और अमेरिका के ओमान में अप्रत्यक्ष बातचीत करने की जानकारी है। हूती के सबसे बड़े संरक्षक ईरान ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा किया है और उसने विद्रोहियों को व्यापक पैमाने पर उन मिसाइलों से लैस किया है जिनका वो अब इस्तेमाल करते हैं। हूती विद्रोहियों के शस्त्रागार में हाइपरसोनिक मिसाइल होने से अमेरिका तथा इसराइल समेत उसके सहयोगियों की वायु रक्षा प्रणाली में अधिक गंभीर चुनौती पैदा हो सकती है। सोमालिया की राजधानी के एक होटल में बृहस्पतिवार रात को जोरदार विस्फोट और गोलीबारी की आवाज़ें सुनी गई और इसकी जिम्मेदारी सोमाली आतंकवादी समूह अल शबाब ने ली। अल शबाब ने अपने टेलीग्राम चैनल पर बताया कि उसके लड़ाके मोगादिशु में अत्यधिक सुरक्षा वाले राष्ट्रपति आवास के निकट स्थित SYL होटल में घुसने में सफल रहे। इस होटल को सरकारी अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। अभी ये जानकारी नहीं दी गई है कि इस हमले में कितने लोग हताहत हुए हैं। सोमालिया की राजधानी में हाल ही के सप्ताहों में सुरक्षा बढ़ाए जाने के कारण हमले में कमी आई है। सोमालिया की संघीय सरकार के विरोधी अल शबाब समूह ने पिछले कुछ वर्षों में होटलों और अन्य स्थानों पर कई घातक हमले किए हैं। मोगादिशु में इससे पहले बड़ा हमला अक्टूबर 2022 में हुआ था, जब दोहरे कार बम विस्फोटों में कम से कम 120 नागरिकों की मौत हो गई थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दोहराया कि यूक्रेन में पश्चिमी दलों को भेजे जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि वर्तमान स्थिति में इसकी आवश्यकता नहीं है। मैक्रों ने बृहस्पतिवार को एक फ्रांसीसी समाचार चैनल से साक्षात्कार के दौरान यूक्रेन में पश्चिमी बलों को भेजे जाने की संभावनाओं के बारे में सवाल किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, इस समय ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन ये सभी विकल्प खुले हैं। मैक्रों ने पिछले महीने भी कहा था कि यूक्रेन में पश्चिमी बलों को भेजे जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसे लेकर कई पश्चिम देशों ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने साक्षात्कार के दौरान कहा कि यदि ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो इसके लिए रूस जिम्मेदार होगा, हम नहीं। उन्होंने कहा, फ्रांस यूक्रेन पर आक्रमण का नेतृत्व नहीं करेगा, लेकिन आज यूक्रेन में शांति की खातिर हमें कमज़ोर नहीं होना चाहिए। मैक्रों ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब इस सप्ताह फ्रांसीसी संसद में देश की यूक्रेन संबंधी रणनीति पर बहस की गई थी। देश की नेशनल असेंबली और सीनेट दोनों ने पिछले महीने मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमिर ज़ेलेंस्की के बीच हुए 10 वर्षीय द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते को प्रतीकात्मक मतों से मंजूरी दे दी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।